जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मा नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 88। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो नित्य शुद्ध सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है, न तुम करता हो न करता हो, करता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहता है, दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और जो कुछ क्रिया आचार अप्राप्त हो उनको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो, अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं, पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत है। हे रामचंद्र जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्यमान ही सत्य किनाई भासती है। हे रामचंद्र जी, चित्त में चैतन्यमय वासना फुरती है सो ही मोह का कारण है, संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृत्तिका को मृत्तिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रचता है, तैसे चित्त से जो चैतन्य में वासना फुरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे रामचंद्र जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता, कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं पर मृग तृष्णा के जल समान असत्य रूप है। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेश के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहां निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है उसमें तम दिखाती है कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उल्लू को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है और स्त्री किनाई चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है। जो तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है, तैसे जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती और भोग रूप प्रकाश बिजली किनाई चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्षण भंगुर रूप है। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख है। हे रामचंद्र जी, जो जो इनका स्मरण होता है त्यों त्यों अनर्थ होते हैं और जो जो इनका विस्मरण होता है त्यों त्यों सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है और स्मरण दुख का निमित्त है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है और जैसे किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। हे रामचंद्र जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प किनाई व्यतीत होती है और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि एक क्षण किनाई व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप भासता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य न हो। शुद्ध निर्विकार निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप है। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उनमें अनेक शाखा युक्त वृक्ष भासते हैं वे सब असत्य रूप है, तैसे यह जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जलपान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। जो जो मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों त्यों कष्ट पाते हैं। शांति नहीं पाते, तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे सुंदर भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगदाकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपने तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न किनाई भासती है। जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र किनाई भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़िया ऊपर नीचे भटकती है, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिद्र है। सारभूत इसमें कुछ भी नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नष्ट नहीं होती। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जावेगी और न जानिएगा कि कहां गई। अविद्या कुहरे किनाई आवरण करती भासती है, परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आते। देखने मात्र स्पष्ट दृष्टि आती है, परंतु विचार करने से अणु मात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है, परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अणु मात्र भी अंधकार नहीं दिखता। वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं, और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प ब्रह्म से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को पदार्थों में रति है, उनकी भावना से उनका चित्त खींचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट पाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उससे चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है और सुख रूप जान के चुगने लगता है तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। जैसे कण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे रामचंद्र जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की नाई सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की नाई होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुखरूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक से स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है, वैसे ही यह सब जगत काल अविद्या से भासता है। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे रामचंद्र जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे रामचंद्र जी, अविद्या निराकार और शून्य है, उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत्रु पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती, उसे अपना आप नहीं भासता। और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देते। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है, आत्मा को भासती है, अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है, बोध से ही हीन कराती है और काम क्रोध उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि करती है। हे रामचंद्र जी, यह अविद्या निराकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बंधा देखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ है उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य संसार की दृढ़ वासना में बंधा है और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वैताल कल्प कर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है और अविद्या आत्मभाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है? वशिष्ठ जी बोले, चैतन्य मुखत्व से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। सब देहों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मनोनामी कल्पना अन्य किनाई आभास होकर भासती है, परंतु आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, न कोई जन्मता है न मरता है और न कोई विकार है, केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। अनित्य सर्वगत शुद्ध चिन्मात्र निरुपद्रव शांत रूप सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है। हे रामचंद्र जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें होती है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जो चैतन्यता होती है उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की नई भासता है और उसी संकल्पना का नाम अविद्या कहा गया है। संकल्प ही से वह उपजती है और कल्पना से ही नष्ट हो जाती है। जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प से ही नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आवे तब यह अविद्या नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तब मन दृढ़ बंधनमय होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब मुक्त होता है। जब अनात्म में अहम अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध होता है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।